नारायण देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीयते नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी श्री कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज का हमारा श्लोक संख्या है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का 19वां श्लोक। तो हम इसको चर्चा करेंगे, पहले इसको उच्चारण करेंगे। न एतत् चित्रम् त्वयि शतबद्रायण वीर्यचे गृहति अनन्य भावेन यत त्वया हरि ईश्वर। न एतच्चित्रं त्वयि शतबद्रायण वीर्यजे गृहीत अनन्य भावेन यत त्वयि हरि ईश्वर। न एतच्चित्रं त्वयि शतबद्रायण वीर्यजे ग्रहितो अनन्य भावेन यत्त्वा हरि ईश्वर। न एतच्चित्रं त्वयि शतबद्रायण वीर्यजे ग्रहितो अनन्य भावेन ग्रहीतो अनन्य भावेन हरि ईश्वर। नेत्रचित्रं त्वयि शतबद्रायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यतत्वया हरि ईश्वर। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हे विदुर, ये तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर से उत्पन्न हुए हो। तात्पर्य बाय डिवाइन गॉड श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर से अवस्थित कर पिता के वीर में अवस्थित कर दिया जाता है। और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे, अतः उन्हें व्यास के वीर से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर स्थापन का संस्कार जो गर्भधान संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर व्यास तथा मैत्री जैसे अच्छी संतान उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त संबंधियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथाकथित जन्म नियंत्रण संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शुद्धकांतिकं। वंदेहं श्री गुरुं श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च। श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सचैवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हरे कृष्ण। तो ये आज की जो श्लोक संख्या है इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार मैत्री मुनि जो विदुर जी को समझा रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आपके पिता कौन है व्यासदेव। तो एक अच्छे माता पिता का होना ये बहुत ही भाग्यशाली बात है हमारे जीवन में। कहते हैं कौन है भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीच। तो गुरु और कृष्ण की कृपा जो कि माता पिता के रूप में भी प्राप्त हो जाती है अगर व्यक्ति का जो पिता है या माता है दोनों भक्त है ना। तो माता और पिता का भक्त होना बहुत ही आवश्यक है और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं उनके बच्चे उनको भक्त बनाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कहते हैं मातृ न शिष्या पितृ न शिष्या गुरु न शिष्या सजनों न शिष्या। वो सजन सजन नहीं है, माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, गुरु गुरु नहीं है जो अपने बच्चों को क्या नहीं करते, कृष्ण भावना भवित नहीं बनाते। तो ये बहुत ही अनेकों अनेकों जन्मों की प्रक्रिया है, ऐसे कोई भी भक्त के घर में जन्म नहीं ले लेता। कहते हैं बहुनान जन्म जन्मनाते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ मतलब थोड़ा, असुदुर्लभ मतलब थोड़े से भी थोड़ा। तो बहुत जन्मों में घूमने के बाद कभी हम किसी घर में वैश्य परिवार में जन्म लिए बिजनेस किए, किसी परिवार में पंडित बने, किसी परिवार में शूद्र बने, कभी जानवर बने, कभी पक्षी बने, कभी वृक्ष बने, कभी जल के जीव बने, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली जीव अनेकों अनेकों जन्मों में थोड़ी 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 भक्ति कर कर जब बड़ा होता रहता है तो फिर उसका जन्म कहाँ होता है, एक माँ बाप के घर में जो कि पहले से ही भक्त होते हैं, है ना। तो ऐसे जीव बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जिस घर में जन्म लिए उस घर में शुरुआत से ही भगवान के नाम का उच्चारण होता था, उनके घर में सभी लोग बचपन से ही उन्होंने देखा कि साधुओं की सेवा करते थे, उनके घर में उन्होंने देखा कि उनके माता पिता शुरू से ही जो गौर मोहन डे है वो जप किया करते थे, उनके घर में जो भी संत आते थे उनकी वो अतिथि भाव से सेवा करते थे, है ना। लेकिन जिस घर में बच्चे देखेंगे कि माँ बाप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उस घर में बच्चे कैसे बनेंगे, है ना। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है कि हम भक्त बने और हमारे ऊपर जो निर्भर है उनको भी हम भक्त बनाएं। तो हमारे ऊपर अगर माता पिता भी निर्भर है वो भी भक्त बनने चाहिए, अगर हमारे ऊपर बच्चे निर्भर है तो वो भी भक्त बनने चाहिए। तो ये मूल है। अब देखिए विदुर जी कितने भाग्यशाली हैं कि एक बार जब भगवान कृष्ण आते हैं कहाँ, हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में दुर्योधन भी है और विदुर भी है। तो हस्तिनापुर में दुर्योधन बुलाते हैं कृष्ण भगवान को, इनविटेशन भेजते हैं कि आप आइए हमारे घर पे प्रसाद ग्रहण करें। हम लोग भी बुलाते हैं कि कोई भक्त हो या सीकर डिवोटी हो, महाराज हो, आचार्य हो, कि आप हमारे घर आइए और प्रसाद ग्रहण करें। तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं और साथ में विदुर जो होते हैं, लेकिन उनके पास तो बहुत गरीब स्थिति में थे क्योंकि दासी के पुत्र थे, तो उनका भी महल था लेकिन उतनी स्थिति का नहीं था जितना कि दुर्योधन का था। तो उन्होंने बोला कि मेरी भी अभिलाषा है कि कृष्ण मेरे घर भी आए। तो अपनी पत्नी विदुरानी को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण मेरे घर में भी आए और प्रसाद ग्रहण करें। तो विदुरानी कहती है आ तो जाएंगे पर खिलाओगे क्या, खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं ठीक है कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करेंगे अगर कृष्ण आने के लिए बोल देते हैं। तो आज वो दुर्योधन के आ रहे हैं, जब वो अपना प्रसाद ग्रहण कर चुके होंगे तो मैं उनसे बोलूंगा कि कृपा कर थोड़ा हमारे लिए भी चरण रखिए भगवान। तो बोले ठीक है विदुरानी को बोल देते हैं। विदुरानी कहती है ठीक है आप जैसे ही आपको पता चल जाए आप तुरंत घर पे चले आना क्योंकि हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ऐसा कर लेंगे। तो फिर भगवान वहां जाते हैं और दुर्योधन के बारे में जानते हैं कि 56 भोग खिलाएगा और उसके बाद क्या मांगेगा, मेरे से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान उसके घर पे जाते हैं और देखते हैं कि उसने 56 भोग तो बनाया है लेकिन इसके मन में क्या है, कोई काम इच्छा है, इसके मन में कोई अभिलाषा है लेकिन प्रेम नहीं है, है ना। भगवान क्या कहते हैं, प्रेम का भूखा हूं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है और भाव से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है और भाव बिना कभी मैं कुछ भी लेता नहीं और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान एक फूल भी स्वीकार करते हैं और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो मैं भक्ते आप प्रयच्छति, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो है। अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता एक फल एक पुष्प भी प्रदान करता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको ग्रहण कर लेता हूँ। तो इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि हम भगवान को क्या प्रदान कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ये है कि हम भगवान को किस भाव से प्रदान कर रहे हैं। तो फिर जब दुर्योधन को देखते हैं, इन्होंने तो 56 भोग बनाया है लेकिन इनके मन में क्या है, अभिलाषा है। तो अभिलाषा होने के कारण वो वहां एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा है। तो भगवान वहां से निकलते हैं और विदुर लाइन में खड़े होते हैं, सारे भक्त जैसे आते हैं जब गुरु आचार्य, तो सारी भीड़ बना के सारे भक्त खड़े होते हैं जैसे कृष्ण को देखने के लिए, इतना सुंदर विग्रह उनका साक्षात चलता हुआ उनको देखने के लिए सब विराजमान थे, सब खड़े थे हाथ जोड़ के हमारे घर हमारे घर। तो भगवान विदुर को इशारा करते हैं तुम्हारे घर। तो विदुर खुश रहते हैं अरे मेरे घर बोल दिया, आने के लिए दौड़ कर जाते हैं अपने घर पे और विदुरानी को बोलते हैं कि कृष्ण अब कुछ ही देर में हमारे घर आने वाले हैं। और फिर जाते हैं, विदुरानी कहते हैं ठीक है जाओ कुछ खाने पीने की वस्तु लेके आओ। तो जाते हैं कि चलो कुछ सामान लेकर आता हूँ। इतने में क्या होता है, जब तक कृष्ण तो भगवान वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अभी विदुर है नहीं घर पे लेकिन विदुरानी है घर पे। तो विदुरानी जो होती है उनके पास में क्या होता है, पहनने के लिए कुछ नहीं होता, बस एक ही वस्त्र था जिसे वो पहनती थी और जब वो सुखा देती थी तो बाथरूम में बैठी रहती थी, जब वो सूख जाएगा तो फिर वो वस्त्र पहन लेती। इतनी गरीब स्थिति में वो रहते थे, ऐसा नहीं था कि उनको धन मिल नहीं सकता था लेकिन उनका जीवन वैरागी था। उन्होंने वैरागी को अपने जीवन का क्या हिस्सा बनाया, उनको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो भक्त है उसके जीवन में मामूली आवश्यकताएं होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी। राधा नाथ स्वामी महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि हमारे जीवन में 100% में से 5 वस्तु है, 5% चीजें जो कि बेसिक नेसेसिटी है। क्या है वो बेसिक, कौन बताएगा, 5 जरूरत की वस्तु है क्या है, वस्त्र क्लोथिंग और प्रसाद भोजन फूडिंग और शेल्टर और 5 भगवान भक्त बेसिक नेसेसिटी। ये तो मतलब मटेरियल व्यक्ति भी हो स्पिरिचुअल भी हो उसके लिए 5 आवश्यक वस्तुएं हैं। क्या है, एक तो फूडिंग, एक शेल्टर, एक क्लोथिंग, एक मेडिकल केयर, है ना। दवाई दवाई गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, है ना, भक्त को भी चाहिए, अभक्त को भी चाहिए। और मेडिकल केयर के साथ एजुकेशन, है ना, आजकल शिक्षित होना आवश्यक है। अगर भक्त भी है तो शिक्षित होना आवश्यक है, अगर नहीं होगा तो भगवद्गीता कैसे पढ़ेगा, थोड़ी अनपढ़ बन जाएगा तो भगवद्गीता पढ़ लेगा। तो इसलिए शिक्षा और ये जो है मेडिकल केयर है ना, ये और फूडिंग क्लोथिंग शेल्टर, ये 5 आवश्यक वस्तुएं हैं जो कि आसानी से किसी को भी मिल सकती है। लेकिन उसके अलावा जो हमारी आवश्यकताएं हैं, घर बनाना, बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना, अच्छे वस्त्र होना, ये सारी 95% आवश्यकता है और हमारा सारा जीवन इन्हीं के ऊपर निर्भर है। 5% बेसिक नेसेसिटी पे अगर जिए ना, हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, सेटिस्फाइड। लेकिन पीपल आर लिविंग देयर लाइफ फॉर अदर 95% आइटम जो कि जीवन की लग्जरी है। घर में हीटर हो गीजर हो ये आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, ये नेसेसिटी नहीं है, ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ये क्या है, लग्जरी है। एयर कंडीशन हो ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ये लग्जरी है। तो अगर बेसिक नेसेसिटी तो हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, तो ऐसे ही विदुरानी के घर में बेसिक नेसेसिटी थी कि बैठने के लिए एक पट्टा था,
और खाने के लिए कुछ फल फूल आ जाते थे, पहनने के लिए एक साड़ी थी, ऐसे विदुर के पास पहनने के लिए एक धोती कुर्ता था, तो बेसिक नेसेसिटी थी उनके पास में। तो फिर क्या हुआ, जब कृष्ण उनके घर में आते हैं तो विदुरानी जो है उनको कहती है आइए विराजमान होइए, तो बैठने के लिए उनको बैठा देती है आसन के ऊपर और खुद सामने बैठ जाती हैं और कहती हैं कि हमारे घर में खाने के लिए ज्यादा वस्तुएं नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि काकी मुझे तो बहुत भूख लगी है, जो कुछ भी है वो मुझे खिला दो अभी तुरंत। तो भगवान क्या वैसे बोलते तो उनके तो हाथ पांव कांप जाते हैं, अभी आकर आपको आप बोलिए भगवान को तो छोड़िए, अगर कोई सीनियर डिवोटी भक्त आपके घर पे आ जाए, कोई आचार्य या गुरु आपके घर पे आए और आपके घर में खाने के लिए कुछ ना हो और वो आकर बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप तो भक्त है जल्दी से मुझे कुछ कृष्ण प्रसाद खिलाइए, तो आप एकदम से विफल हो जाएंगे, क्या करूं कैसे करूं कैसे भी करके कृष्ण को कहां से खिलाऊं, तो ऐसे करके वो भी परेशान हो गए। तो उनको पता चला घर में क्या पड़ा, कुछ सड़े हुए पुराने केले पड़े हुए, तो केले उठा के ले आए विदुरानी और फिर लाकर क्या किया, इतने भाव में उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि कृष्ण कितने कृपालु हैं कि एक मेरे जैसे गरीब के घर में भी क्या हुए आ गए हैं। तो इस तरह से वो रोते रोते केला छील रही है और छील छील के क्या कर रही है, प्रेम में खिला रही है ना, और कृष्ण भी क्या कर रहे हैं प्रेम में काकी के आंसुओं को देख रहे हैं और उनके भी नेत्र में गीले गीले नेत्रों से वो क्या कर रहे हैं केले के छिलके खा रहे हैं। अभी याद आया बाद में छिलका खिला रही है कृष्ण को और केला फेंक रही डस्टबिन में, खिलाने छिलका कृष्ण को खिलाने में डर। जब सारा कुछ समाप्त हो गया, सारे छिलके कृष्ण खा गए, तब विदुर एंटर किए और विदुर देखे क्या समाधि है दोनों की, वो छिलके खिला रहे हैं वो भी प्रेम से छिलके खा रहे हैं और वो केला इधर डस्टबिन में फेंक रहे हैं। हमारे साथ ऐसा होता है कभी भी नहीं होता, हम ज्यादा केयर करते हैं ना तो हमारे अंदर इसीलिए प्रेम नहीं है, प्रेम होता है रागों का भक्ति और अभी हम करते हैं वेदी भक्ति, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हम वेदी छोड़कर राग को चले जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा करने का प्रयास भी करें तो हम खाली इमिटेशन करेंगे सहजिया भाव से। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि आप वेदी भक्ति का पालन करो, अपने नियमों का पालन करो, सुबह उठकर अपनी 16 मालाओं का जाप करो, एक घंटा कथाओं का श्रवण करो, एक घंटा कम से कम रोज शास्त्रों का अध्ययन करो, इसको करने से ऐसा लेवल प्राप्त हो सकता है जीवन में, अगर आप इसको निष्ठा से रेगुलरली करते रहे विदाउट मिस, है ना। तो लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारा तो मन नहीं लगता जब करने में, शास्त्र पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, हियरिंग करते हैं तो नींद आ जाती है, कथाओं में बैठना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति के लिए बताया गया है कि अगर आप कृष्ण चेतना में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक्टिविटी लेवल, है ना, सिर्फ नियम के लिए करिए, जैसे ब्रश करते हैं ना, कभी कभी इच्छा नहीं होती, ठंड लग रही होती है, चलो बस करना है करके अंदर आ गए, नहाना है ज्यादा नहाने की जरूरत नहीं है, बस एक मग याद डाल पाएंगे इतना ठंड लगे, पर एक्टिविटी लेवल पे तो कर रहे हैं ना, तो कम से कम उसे करने के लिए तो करिए, करते करते उसके अंदर रस उत्पन्न हो जाएगा और रस आने के बाद में फिर ऐसी विदुरानी जैसी स्थिति होगी और फिर कृष्ण 56 भोग को त्याग कर क्या करेंगे, हमारे घर का रूखा सूखा खाने आ जाएंगे। जरूरत नहीं है आपके पास 56 भोग हो तभी कृष्ण आते हैं, है ना। इसलिए मेन इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में क्या लेके आए, कृष्ण प्रेम को लेके। आप देखिए मंगला आरती में सुबह सुबह 10 नाम अपराध पढ़े जाते हैं, उस 10 नाम अपराध के बाद एक चीज पढ़ी जाती है, क्या कौन बताएगा, एक स्टेटमेंट आती है 10 नाम अपराध के बाद क्या बोलते हैं उसमें, हाँ ये 11वां नाम अपराध है और इसके बाद ताकि श्री कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अभी देखिए आप अपने जीवन में एनालिसिस करें तो आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, गारंटी है कृष्ण प्रेम तो नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या वस्तु है, हो सकता है मेरे जीवन का परम लक्ष्य हो कल मैं मैनेजमेंट बेस्ट करके दिखाऊंगा, कल मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये नंबर स्कोर लेके दिखाऊंगा, कल मैं ये सा करके दिखाऊंगा वैसा करके दिखाऊंगा, अपना नाम स्थापित करके दिखाऊंगा, अपने को बेस्ट डिवोटी बता के दिखाऊंगा, ये सब चलता रहता है, लेकिन मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ये कोई व्यक्ति अभिलाषा नहीं रखता है। अगर वो रखेगा तो जितनी भी एक्टिविटी करेगा वो किस लेवल पर होगी, ह्यूमिलिटी के लेवल पे होगी, विनम्रता के लेवल पे होगी। आप देखिए श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते वक्त श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे हैं तो उनके मन में यह अभिलाषा नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों वाला अनुयायी बना दूंगा, 108 मंदिर बनाऊंगा, बस अब तो मुझे मिशन कंप्लीट करना है, इसलिए वो विदेश जा रहे हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं विदेश? इसलिए जा रहे हैं कि मेरे गुरु ने बोला कि जाओ विदेशों में जाकर क्या करो, पाश्चात्य देश तारण, पाश्चात्य देशों का तारण करो, वहां जाकर क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बोलने के लिए वो भेजा गया श्रील प्रभुपाद जी, और वो भी जाकर ज्यादा एफर्ट नहीं किए, वो सिर्फ क्या किए, कृष्ण से प्रार्थना किए। एक भक्त के पास सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र एक ही है, क्या, प्रार्थना। जो व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है ना, वो उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। तो भक्त पूछते हैं मुझे हमें प्रार्थना नहीं आती, तो प्रार्थना नहीं आती तो प्रार्थना करो, कृष्ण हमें प्रार्थना सिखाइए ताकि हम आपके चरणों में कृष्ण प्रीति प्राप्त कर सके। बोले ये भी प्रार्थना नहीं आती, कैसे बोले, हमें तो बोलना ही नहीं आता, हम तो है ना गलत शब्द बोल बोल के हमारी तो भाषा ही बिगड़ गई है ना, गालियां निकलती है, लेकिन कृष्ण के प्रेम में नहीं निकलता। तो फिर ये प्रार्थना करें कि ऐसे शब्द बना दे हमारे कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि उस प्रार्थना से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो अगर हम गुह्यतम नीचे जाते जाएंगे ना नित्य कृति में, तो हमें पता चलेगा कि भक्त के पास एक ही पावर है, क्या, प्रार्थना। और उसी प्रार्थना के बल पर हमारे घर में भक्तों का जन्म होता है, और उसी प्रार्थना के बल पर हमारा अगला जन्म या तो भगवत धाम में होगा या तो फिर भक्त के घर में होगा, है ना। कहते हैं ना, शुचिनाम श्रीमताम गृहाम योगाम भष्ट उपजायते। जिस व्यक्ति ने अपनी भक्ति एक से शुरू कर और 50 तक पहुंच गया, अभी उसका 100 तो हुआ नहीं और पूरा भी नहीं हुआ और 50 पर है, तो अभी क्या होगा उसका, बीच में टूट जाएगा, वापिस इस जगह आएगा, फिर बहुत ही जीवन में कष्ट होगा। नहीं, उसके लिए बोलते हैं कि अब जब वो अगला जन्म लेगा तो एक ऐसे भक्त के घर में जन्म लेगा जहाँ 50 मंथ से उसकी भक्ति स्टार्ट होगी, 51 से। लेकिन कोई भौतिकवादी व्यक्ति है, उसने MBBS किया, फिर MD किया, फिर PhD किया, फिर FRCS किया, वो पढ़ता रहा और उसका शरीर छूट गया, तो अभी क्या होगा, जब दोबारा स्टार्ट होगा तो FRCS के आगे से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, ABCD से शुरू होगा। तो ये है भौतिक जीवन, ये है भक्ति। इसलिए भक्ति करना कभी भी बेकार नहीं जाता, है ना। भगवत गीता कहती है ना, इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भयः, है ना। अल्प मतलब थोड़ा और सुअल्प मतलब थोड़े से भी थोड़ा। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान के लिए करता है तो भगवान उसको क्या करते हैं, मान भय से तार देते हैं। और सबसे बड़ा भय है किसी भौतिक वाले के घर में जन्म लेना, जहाँ पर बचपन से ही सिखाया जाए बिजनेसमैन बनो, पैसे कमाओ, बड़े अफसर बनो, बस और इसका क्या करो, सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करो, हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी विजय का पताका लहराओ, ये जो सिखा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा कष्ट है। इस महान भय से कौन तार देते हैं, कृष्ण। कहाँ जन्म देते हैं, एक भक्त के घर में जन्म देते हैं, जैसे विदुर जी को दिया। और बचपन से इसको क्या सुनने को मिलता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें अपने जीवन में अगर इस प्रकार से हम पूर्ण भक्ति भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दूसरे परिवार में हमें जन्म मिल सकता है, तो उसके लिए लेकिन भक्त की क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे पहली क्वालिटी भक्त की है विनम्रता, है ना, ह्यूमिलिटी। बताते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। अभी भक्ति लता का बीज तो मिल गया, चैंटिंग करना सीख गए, मंदिर में आए तो हमारे प्रभु जी ने माला पकड़ा दी कि आप आया करिए प्रवचन में, जप करिए, बीज मिल गया। लेकिन अब बीज खाली बीज से काम नहीं चलेगा, आप अपने घर में तुलसी का पौधा उगाया होगा सभी भक्तों ने, तो बीज मिल जाता है आपको, क्या करते हैं उसको लाके बोते हैं, कहाँ बोते हैं, मिट्टी में। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सख्त या सॉफ्ट, सॉफ्ट। तो जो ये मिट्टी है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमस शब्द आता है ग्रीक शब्द को, में बोलते हैं ग्रीक में ह्यूमस मतलब सॉइल, मिट्टी, ह्यूमस शब्द से ह्यूमिलिटी आया अंग्रेजी शब्द, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। तो ये विनम्रता का जो ये मिट्टी है ना, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व गौड़काय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो ये ह्यूमिलिटी है सॉइल, है ना, विनम्रता की मिट्टी, इसमें आपका बीज आरोपित किया जाएगा। और फिर उसके बाद मिट्टी में लगा दिया बीज, छोड़ दिया, उसके बाद क्या करेंगे, पानी देंगे, बहुत सुंदर। तो फिर क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन कर जल सिंचन, अपने श्रवण करें, भगवान के नामों का श्रवण करें, कथाओं का श्रवण करें, श्रवण कीर्तन, और फिर सुनने के बाद में साथ साथ उनका कीर्तन भी करें। जिसको मिले उस व्यक्ति को क्या बोले, कृष्ण के बारे में बोले कि इसको सेक्टर 37 में एक फरीदाबाद में इस्कॉन टेम्पल है, वहां पर राधा कृष्ण की कथाएं होती है, आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना, और कुछ नहीं सुना तो कम से कम मैंने क्या सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब कोई व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को बनाएगा तो उसके जीवन में क्या होगा, ह्यूमिलिटी आ जाएगी, है ना। ह्यूमिलिटी के बीच में आपने मिट्टी में आपने बीज लगा दिया भक्ति का, और उसमें जल सिंचन करने लगे, ठीक है। अभी क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा पौधा इतना बड़ा हो गया, अभी इतने बड़े पौधे के साथ में आप छोड़ नहीं सकते उसको, उसको रेगुलरली पानी देना पड़ेगा, और साथ में क्या करना पड़ेगा उसको, हाँ खाद देनी पड़ेगी, है ना। हाँ खाद क्या है हमारे जीवन में, क्या चीज की खाद हम भक्ति के लिए डालेंगे, साधु संग, है ना। साधुओं का संग ऐसी खाद है जिसको डालने से क्या होगा, सॉइल और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जब साधु पिताड़ित करते हैं ना, एक साधु दूसरे साधु को बोलता है, अरे प्रभु जी आपसे काम वाम होता है नहीं, आप तो छोड़ दो मंदिर की सेवा है, जब ऐसे बोलता है ना तो ये विनम्रता, अभी आपने रिप्लाई किया ना तो बस खत्म, फिर वो आप विनम्र नहीं बन पाओगे। लेकिन जब आपको मिला तमाचा, उसके बाद आपने रिप्लाई नहीं किया, बस अब आपकी सॉफ्ट हो गई मिट्टी, उसने अपने फावड़े से, अपनी भाषा के फावड़े से मिट्टी को सॉफ्ट कर दिया, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि पेड़ बड़ा होने लग जाएगा, और जब पेड़ बड़ा होता है तो साथ में उसकी क्या आती है, खलपतवार, और भी पौधे में बहुत सारी चीजें निकलती है ना, तो फिर उसके अंदर वो जो खलपतवार है ना, जो अनेक पौधे निकल रहे हैं, वो क्या है, ईगो अनर्थास, है ना। व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार आ जाएगा, अब तो मैं क्या बन गया हूँ, भक्त बन गया हूँ, श्रेष्ठ भक्त बन गया हूँ, है ना। इस तरह से जब वो आएगा तो क्या होगा, पौधा तो रुक जाएगा, बाकी घास और बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी हो जाएगी। तो क्या करें ऐसी स्थिति में, सबसे जल्दी तुरंत पौधे को निकाल फेंके, है क्या निकाल फेंके, खलपतवार को निकाल, खलपतवार को निकालना चाहिए रोज की रोज। रोज ईगो जब आए तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, रात को सोने से पहले दो जूते सिर पे मारो और सुबह उठ के दो झाड़ू सिर पे मारो। आपको ऐसा नहीं करना है। दो जूते मारने का मतलब है, आज मैंने जितना भी गलत बोला उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कृष्ण, थर्ड थर्ड मारा मैंने, और सुबह जब उठे तो अपने सिर में जितने भी गलत ख्याल थे उनकी सफाई कर करके आज मैं फिर से अच्छी तरह से क्या करूंगा, भगवान आपकी सेवा करूंगा। और ये झाड़ू मारना क्या है, भगवान के नामों का जप करना, भगवान ने ये माला दी है, आचार्य ने माला दी है, उस माला में क्या बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर जब ये पौधा बड़ा होने लगेगा तो बहुत सारे पक्षी और जानवर उसको खाना चाहेंगे, खाना चाहेंगे कि नहीं, तो आप क्या करते हैं, पक्षी जानवर से बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या बनाते हैं, एक फेंसिंग बनाते हैं, है ना, बाड़ा बोलते हैं, बाड़ा, फेंसिंग बनाते हैं। फेंस बनाने का मतलब है उस फेंस के उस पार होता है ऑफ, इस पार होता है ऑन, जिन्होंने क्रिकेट खेला वो जानते हैं, ऑन ऑफ, ऑफ द बॉल ऑन द बॉल बोलते हैं, ऑन द बैटिंग ऑफ द बैटिंग, तो वो है जब फेंस है, फेंस मतलब बाड़ा, उसके उस पार क्या है ऑफ द फेंस, और इस पार क्या है ऑन द फेंस, तो उसके पार जो है वो है ऑफ फेंस और इसके पार क्या है ऑन फेंस। तो हमें ऑफेंस से बचना है ना, अपराधों से बचना है ना, भक्तों की निंदा करना, भगवान के नामों को एक कर्म कांड के समान समझना, 10 प्रकार के अपराध जो कि वर्णन है हमारे शास्त्रों में उनको पढ़े, इसीलिए रोज सुबह पढ़े जाते हैं, झाड़ू मारी है ना, साथ में ऑफेंसिंग, फेंसिंग को ध्यान से पूर्वक देखा, और उसके बाद क्या किया, फिर भागवत क्लास में आए, श्रवण कीर्तन कर जल सिंचन। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी एक बार तो पानी डाल दिया, क्या बार बार पानी डालना जरूरी है, हाँ जरूरी है कि नहीं है। पौधे में संडे की संडे डालते हैं या रोज डालते हैं, रोज डालते हैं, हाँ तो रोज डालना जरूरी है, नियम पूर्वक रोज अपना श्रवण कीर्तन करना आवश्यक है। एक दिन संडे संडे डाला तो पौधा नष्ट हो जाएगा। आप कहते हैं कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का मूल ही साधु संग है, कृष्ण भक्ति जन्मे पुनः मुख्य अंग, कृष्ण भक्ति का जन्म होने के बाद भी मुख्य अंग क्या है, साधु संग। जितना साधुओं का संग करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, जरूरी नहीं कि आप ठंड के कारण यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो आप साधु का संग नहीं कर सकते। सबसे बड़ा साधु का संग क्या है? श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का पढ़ना, ये सबसे बड़ा साधु संग है। इसी में सारे उत्तर मिल जाते हैं। भगवद गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, इसमें सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि रोज साधुओं से मिले, जब तक साधु नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। साधु के पैरों में जंजीर डाल दी, बोले साधु संग बोला था, अब हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। साधु संघ का मतलब है शास्त्रों का अध्ययन, या फिर जिस भी व्यक्ति से मिले मंदिर में आकर कथा सुने, नहीं तो श्रील प्रभुपाद जी की सीरीज मिलती है लेक्चर की, है ना, आईपॉड में लेक्चर्स ले सकते हैं और उनका श्रवण कर सकते हैं ऑडियो फाइल बनाकर, तो वो श्रवण करना है। और कीर्तन जो भी सुने उसको बताएं। अरे बोले बताने के लिए कोई मिलता नहीं, अपनी सोसाइटी में बताइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने काम करने वालों को बताइए। आपके घर में गाड़ी साफ करने वाले आते हैं, झाड़ू लगाने वाले आते हैं, उनको बोलिए क्यों व्यर्थ अपना जीवन बेकार करते हो, भगवान के नामों का जप क्यों नहीं करते, है ना। चेतन महाप्रभु कहते हैं, जा रहे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा ते गुरु ए ये तार ए देश। अपने ही देश में गुरु बनना है, गुरु बनने का मतलब अपने घर में गुरु बनना है। जरूरी नहीं है कि जब तक मुझे फरीदाबाद मंदिर में प्रवचन के लिए नहीं बोला जाएगा टेप लगा कर रखूंगा, कृष्ण कथा नहीं बोलूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। जहां भी मिले, जिससे भी मिले, ऑफिस में काम करते हैं तो उनको बोलिए, है ना, जॉब करते हैं तो अपने आसपास के लोगों को बोलिए, कोई भी व्यक्ति किसी को भी, रिक्शे पे बैठे हैं रिक्शे वाले को बोलिए, दुकान पे सामान लेने गए दुकानदार को बोलिए। ये नहीं कि बस मंदिर में आके कृष्ण कथा और बाहर सब कुछ बेकार, ऐसा नहीं। भगवान हमारे शरीर में भी तो विराजमान है, इसके अंदर आप देखिए, अगर आपको कोई व्यक्ति गंदी प्लेट में खाने को दे तो खाएंगे आप? खाएंगे। कोई व्यक्ति आपको गंदी कुर्सी पे बैठने को दे बैठेंगे? तो फिर ये शरीर में जो ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान विराजमान है, इसमें हम गंदी वस्तुएं क्यों डालते हैं, इसमें हम गंदे विचार क्यों डालते हैं, इसमें हम गंदी भाषा क्यों डालते हैं, है ना। तो ये तो चलता फिरता मंदिर है और जितने भी लोग घूम रहे हैं ना सबका शरीर मंदिर है ना, लेकिन उनको समझाना जरूरी है हमारे को। तो उसके लिए भगवान ने आपको चुना है कि कुछ भाग्यशाली जी आज फरीदाबाद में बैठ के इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आपको जाकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको भी मिले उसको बताएं द बेस्ट प्रोसेस फॉर कलियुगा इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना। इससे कम से कम ये होगा जब अगला जन्म मिलेगा, भगवान के घर में नहीं मिला तो कम से कम किसी भक्त के घर में मिलेगा, और बचपन से क्या सुनने को मिलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जी इतने इतने ग्लोरीफाई करते हैं अपने पेरेंट्स को, कहते हैं मेरे पेरेंट्स के कारण ही मैं भक्त बन पाया। जब प्रभुपाद 5 वर्ष के हैं तो उनके पिताजी उनके लिए एक विग्रह लेकर आते हैं गिफ्ट में, है ना, बर्थडे गिफ्ट, ऐसे हम लोग लेके आते हैं बॉक्सिंग किट बच्चे के लिए, कह रहे खेल बेटा, पहले घर में मार फिर घर सड़क पे जाके मार 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 के पूरा हाल कर दिए पब्लिक का, ये सिखाते हैं बॉक्सिंग किट्स, है ना। या फिर उसको ला कर देते हैं क्या इंजीनियरिंग टूल्स, पहले इंजीनियर बन नकली फिर बड़ा इंजीनियर बने हो, ठीक है, और उसके बाद दुनिया के पेज लाइट करता फिर, या फिर सिरिंजेस ला कर देते हैं बचपन में, पहले नकली डॉक्टर बनना और फिर बड़ा डॉक्टर बनना, और फिर क्या करना लोगों को सर्दी खांसी जुकाम में भी उनकी किडनी निकाल लेना, बोलना कि एडमिट करना जरूरी है अब आपकी किडनी खराब हो गई है, अरे भाई रात के लिए आया था किडनी क्यों निकाल ली मेरे। तो ये माँ बाप की है कि माँ बाप भक्तों को ऐसा बच्चों को इस प्रकार का संस्कार दे रहे हैं। अगर वो शुरू से सिखाए जैसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मेरे माता पिता ने मुझे 5 वर्ष की उम्र में क्या ला कर दिया, राधा गोविंद का विग्रह ला कर दिया और कहा तुम इसकी क्या करो, डेली वर्शिप करो, डेली सुबह उठकर भगवान की आरती करो, भगवान को भोग ऑफर करो और बिना ऑफर किए कुछ मत खाना, प्रभुपाद जी का नियम हो गया। और फिर एक बार उन्हें जगन्नाथपुरी की यात्रा पे ले जाते हैं उनके पिताजी, तो उनको भी पसंद आता है कि मैं रथ बनाऊंगा, तो छोटा सा रथ बनाते हैं और उस रथ को पूरे गांव में अपने घर के आसपास बाड़ी में आंगन में निकालते हैं उसको, और फिर सब लोग उसके ऊपर क्या करते हैं डोनेशन देते हैं, और फिर उस डोनेशन से अगली बार नया रथ बनाते हैं। तो उनकी प्रक्रिया बन गई थी, और उनकी माता चाहती थी कि वो क्या बने, बैरिस्टर बने, एडवोकेट बने, बाहर जाए विदेश जाए, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो भक्त बने, है ना। और फिर घर में मृदंग सिखाने के लिए टीचर आता था कि मृदंग सीखो, शास्त्र सीखो, कीर्तन सीखो, और बड़े खुश होते थे उनके पिताजी जब वो क्या करते थे, कीर्तन करते थे, मृदंग बजाते थे। तो ऐसे भाग्यशाली होते हैं माँ बाप जिनके बच्चे भक्त बनते हैं, और ऐसे बच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ बाप भक्त होते हैं। तो दोनों तरह से ट्रू एंड फ्रो भक्त रहना, भक्तों का परिवार ही बेस्ट परिवार होता है ना। कहते हैं भवन मतलब होता है भगवान का वासस्थान, जिस घर को भवन बोलते हैं उस घर को हमारे भवन में आई है, या फिर लिख देते हैं कमल भवन, हरि भवन। तो भवन में भव का मतलब है भगवान का वासस्थान। अभी भगवान को हटा दो तो क्या बचा, क्या बचेगा? भवन में भव को हटा दो क्या बचेगा? वन। वन में कौन रहते हैं? ध्यान। तो इसीलिए तो क्लेश है घर के अंदर, एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं। क्यों? प्रेम नहीं है, भगवान नहीं है। केंद्र बिंदु कृष्ण रहेंगे तो उस घर का हमेशा भला ही भला होने वाला, कभी बुरा नहीं होगा, है ना। इसलिए कहते हैं जब आप भगवान से लाभ चाहते हैं तो आपको दूसरों का भला करना चाहिए ना। लाभ का उल्टा होता है भला। भगवान से लाभ चाहते हैं तो खाली शुभ लाभ का स्टिकर लगाते हैं दिवाली पे, तो लाभ नहीं होगा। लाभ चाहते हैं तो भला करिए। और सबसे बड़ी भलाई क्या है? किसी भी व्यक्ति को बताना कि तुम्हारी आत्मा इस शरीर में बंद हो गई है और इससे मुक्त होने का एक ही रास्ता है, भगवान के नामों की शरण लेना। अगर कोई व्यक्ति ये बताएगा ना, भला करेगा दूसरों का, तो उसको जीवन में लाभ आएगा ही आएगा, गारंटी है। राधा गोविंद स्वामी महाराज अपने प्रवचनों में बताते हैं कि जो भगवान है कृष्ण, उनको एक नाम और है उनका, श्री श्रीवास बोलते हैं ना, श्रीनिवास। श्रीनिवास मतलब श्री, मतलब लक्ष्मी जी का निवास है उनके वक्ष तल पर, है ना। तो इसलिए उनको नाम है श्रीनिवास। और जब उसे भगवान को हम दर्शन करते हैं तो क्या होता है, उसके जीवन में लक्ष्मी जी आती है। कोई व्यक्ति अगर लक्ष्मी चाहता है तो लक्ष्मी जी की आरती करने से लक्ष्मी जी नहीं आती है। भगवान की आरती करने से, भगवान के दर्शन करने से, भगवान के नामों का जप करने से श्री क्या है उसके ऊपर आएगी आएगी, है ना। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि ये गलत फहमी है कि कोई भी भक्त गरीब होता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कृष्ण भक्त मतलब गरीब। अरे वो गरीब नहीं होता है, वो वैरागी होता है, वो छोड़ देता है, लेकिन वो गरीब नहीं होता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। अगर वो चाहे ना तो देखिए शिला प्रभुपाद 40 रुपए लेकर विदेश जाते हैं, है ना, कृष्ण भक्त है। और श्री जी ऐसा कमाल करती है कि $1 million का बिजनेस करके लौट आते हैं, 108 मंदिर बना देते हैं। आप देखिए अगर हमें एक मंदिर बनाना हो फरीदाबाद में इस्कॉन का, तो कितना मुश्किल है। और प्रभुपाद जी 40 रुपए में 108 मंदिर बना दिए, वो भी बड़े बड़े विशाल, वृंदावन में जैसा बड़ा मंदिर है। तो क्या समझते हैं आप, भगवान की भक्ति करने से गरीबी आती है अमीरी आती है? अमीरी आती है ना, क्योंकि श्री जी उसके ऊपर विराजमान होंगी ही होंगी। क्यों? क्यों? क्या करता है? भगवान के नामों का जप करता है, भगवान के दर्शन करता है। आप देखिए महाराज बता रहे थे कि जो बिरला होते हैं ना, बिरलास, ये इसलिए पैसे वाले बने क्योंकि इन्होंने लक्ष्मी नारायण की सेवा करी। कुछ नहीं किया, कम से कम मंदिर तो बनाए, है ना, लोगों के अंदर श्रद्धा दी कि लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी चाहिए। तो इनकी इतने से करने से क्या हुआ, उनके घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं। आज भी लोग बोलते हैं अरे छोड़ो यार बिरला थोड़ी हो, उनका टाइटल बन गया बिरला। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा करी। और उनके जो पिता, उनकी जो परंपरा है, अगर उनके नाम देखें तो उनके नाम है ऐसे, दामोदर दास बिरला, घनश्याम दास बिरला। माँ बाप सिखा रहे हैं तुम कौन हो, सर्वेंट ऑफ कृष्णा, है ना। तो हमें ये भी नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को कि तुम कौन हो, भगवान। लोग अपने भगवान, बच्चों का नाम ना भगवान के नाम पे रख लेते हैं कृष्णा, और फिर बताते हैं बेटा तो कान्हा है मेरा, कृष्णा है, लल्ला है ना। बच्चा भी धीरे धीरे बढ़ाता सोच लेता है मैं ही तो भगवान हूँ, फिर वो गुरु बनता है, आचार्य बनता है, फिर जेल भी जाना पड़ता है उसको। तो है ना, इसके कारण ये है कि वो शुरू से माँ बाप ने उसको क्या सिखाया, तो कौन है, कृष्ण है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण का दास है। इसलिए नाम के आगे दास लगा दो शुरुआत से। बच्चा पूछेगा अरे मम्मी पापा आपने मेरे नाम के आगे दास क्यों लगाया, बोले इसलिए लगाया क्योंकि तू कृष्ण नहीं है, तू कृष्ण का दास है। तब तो उसको रियलाइज रहेगा जीवन भर, है ना। जब भी लिखेगा दास, कम से कम अपना नाम आदमी सबसे ज्यादा लिखता है। राइटिंग में अगर देखें, फॉर्म में, पासपोर्ट में, हर जगह नाम सबसे ज्यादा, पेपर भी देंगे नाम, नाम हर जगह नाम। तो दास लिखते 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 उसकी मेंटेलिटी में इम्प्रिंट्स पड़ जाएंगे कि तू कृष्ण नहीं है, कृष्ण का दास है। तो इस तरह से माँ बाप को सिखाना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को सिखाया गया शुरुआत से, है ना। उनके पिताजी ने सिखाया तुम कौन हो, कृष्ण के दास हो। और जब वो विवाह भी करने जाते हैं तो उनकी जो पत्नी है उनको पसंद नहीं आती देखने में श्रील प्रभुपाद जी को, तो उनके पिताजी माताजी का क्या करता है, आजकल माँ बाप बोलते हैं बेटा पसंद नहीं आई, हाँ मुझे भी पसंद नहीं आई, जब तक ऐश्वर्य जैसी ना मिलेगा शादी नहीं करना बेटा, बिल्कुल भी एकदम मेरी बहू होनी चाहिए ऐसी, बस पूरी सोसाइटी में जब आए ना तो लोग लाइट बंद कर दो, वैसे होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए। तो ये गलत है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब पता चला उनके पिताजी को कि उनको पसंद नहीं आई है लड़की, वो 16 साल के थे और उनकी जो पत्नी थी वो 13 साल की, देखने गए जब लौटे तो बोले कि कैसी लगी स्त्री तुमको लड़की देखने में, तो प्रभुपाद जी बोले अपने पिताजी को ठीक है, तो बोले ठीक है का मतलब कुछ गड़बड़ है, पसंद नहीं आई, तो बोले कि नहीं नहीं ठीक है आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं, नहीं नहीं आप बताओ पसंद नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं ठीक है लेकिन नॉट मच ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर नहीं है। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने बोला गौर मुंडे ने कि ये तो बेस्ट है, भक्त के घर में अगर खूबसूरत पत्नी आ जाएगी तो सारा दिन वो कृष्ण को छोड़कर पत्नी की सेवा करेगा, इसलिए अगर इतनी इतनी है कि वो कृष्ण भक्त है और बहुत सुंदर भी है, तो ये बेस्ट है। तो प्रभुपाद जी को ये बात समझ में आ गई, फिर उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने से क्या हुआ कि उनका अटैचमेंट कृष्ण से रहा। अगर बहुत सुंदर पत्नी आ जाए, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली हो, तो फिर क्या होगा, बस कृष्ण तो गए वार्ड में, अभी तो दोनों जाएंगे नैनीताल मसूरी घूमने के लिए, फोटो खींचेंगे फेसबुक पे अपलोड करेंगे, ये चलता रहेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ऐसा परिवार चुने जहाँ पर कृष्ण भक्ति हो, और अगर नहीं है तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर में कृष्ण भक्ति लाए। तो जब शिला प्रभुपाद जाते हैं कहाँ, विदेश में, तो इतने विनम्र है। प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे कि चार प्रकार के भक्त होते हैं, प्रथम श्रेणी के भक्त, द्वितीय श्रेणी के भक्त, तृतीय श्रेणी के भक्त, चतुर्थ श्रेणी के भक्त। तो एक भक्त ने नीचे से उठकर पूछ लिया, अंग्रेज होते थे, है ना, तो एकदम से पूछ लिया, अरे मैन आप बोलते हैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, आप बोल रहे हैं ऊपर बैठ के हमारे देश में, तो आप प्रथम श्रेणी के हैं, और हम सुन रहे हैं तो हम चतुर्थ श्रेणी के हैं। तो प्रभुपाद ने हाथ जोड़कर बोला और रोने लगे, बोले मैं तो इन चारों श्रेणियों का दास हूँ, मैं तो पंचम श्रेणी का हूँ। ये देखिए विनम्र, हम प्रवचन दे रहे हो कहीं या कहीं रोड पे भी बोल रहे हो, और कोई आदमी आके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अरे चुप करो, देखें तुम्हारे इस कौन वाले, अबे चलना है, अभी बताना साइड में तुझे, देखिए गुस्सा आ जाता है एकदम से। तो विनम्रता नहीं है, है ना, हम भूल जाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हम कृष्ण के दास हैं, है ना, हम दासों के दास हैं, भूल जाते हैं। एक बार बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार अभी हम लोग यात्रा में गए थे रामेश्वरम और तिरुपति और श्रीरंगम, उसका प्रसाद भी लाया हूँ, तो सभी भक्त क्लास के बाद में प्रसाद लेके जाइएगा, खाइएगा बाहर जाके, लेकिन लीजिएगा यहाँ पे। तो हम जब गए तो वहाँ पर मैं एक कथा सुना रहा था श्रीरंगम क्षेत्र में, कि श्रीरंगम में रामानुजाचार्य महान आचार्य हुए, उनके एक भक्त थे कुरेश, और कुरेश के एक पुत्र थे जिनका नाम था पराशर भट्ट। तो जो पराशर भट्ट थे इतने महान आचार्य थे कि उनके पास 300 से अधिक सन्यासी शिष्य थे। आप सोचिए क्या स्थिति होगी उस आचार्य की, उसके 300 से अधिक सन्यासी शिष्य हैं, है ना। ऐसे वैसे जब पराशर भट्ट एक बार श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जब एंटर करते हैं टेंपल के अंदर, तो देखते हैं कि ये ना सारे पुजारी जो है उनको रोक देते हैं कि रुकिए अभी आप दर्शन नहीं कर सकते महाराज, थोड़ा वेट करिए। तो हैरान हो जाते हैं क्यों मुझे रोक दिया, तो बोलते हैं एक्चुअली क्या हुआ है ना, मंदिर के पट खुले रह गए दरवाजा, और एक कुत्ता दौड़कर आया और क्या किया, वो अंदर चढ़ गया अल्टर पे। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर क्या हुआ, बोले अल्टर की धुलाई हो रही है, अपवित्र हो गया अल्टर, अपवित्र हो गया है, अल्टर मतलब जहाँ भगवान होते हैं, है ना, तो इसके ऊपर अगर कुत्ता चढ़ जाए तो क्या हुआ, धुलाई करेंगे, वो कुत्ता चढ़ गया अपवित्र हो गया। तो पराशर भट्ट जो है ना रोने लगे, तो सारे शिष्य जो थे ग्रस्त शिष्य सन्यासी शिष्य ब्रह्मचारी शिष्य सब बोले, अरे महाराज क्या हुआ, इतना विरह हो रहा है आपको दर्शन ना होने के कारण, क्या आप रोने लगे। बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे दर्शन नहीं हुए, मेरे आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मुझे दुख हो रहा है कि मैं तुम लोगों को सही शिक्षा नहीं दे पाया। सही शिक्षा, आप तो अच्छी शिक्षा देते हैं, कृष्ण भक्ति बताते हैं, वैराग्य सिखाते हैं, क्या गलत सिखाया आपने। कह रहे हैं कि देखो आज जब कुत्ता इस ऑल्टर पे चढ़ा तो आप इसको धो रहे हैं, लेकिन जब मैं रोज इस पे चढ़ता हूँ तो आप इसको रोज नहीं धोते हैं। तो उन्होंने कहा मतलब, बोले मेरी स्थिति इस कुत्ते से बेहतर समझते हैं आप लोग, यही तो मैं तुम लोगों को सिखा नहीं पाया। अगर हम ये समझ रहे हैं कि एक भक्त की स्थिति क्या है, एक कुत्ते से भी नीचे है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे समझ पाएगा तब वो श्रेष्ठ भक्त बन पाएगा, और ना वो समझता रहेगा मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे नियम है, मेरे अनुसार चलना चाहिए। अरे तुम कौन हो चलाने वाले, चलाने वाले कौन है, कृष्ण। आप करता है ही नहीं, अहंकार निमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार में लगता है मेरे कारण हो रहा है। इस विनम्रता को जब प्राप्त होते हैं तब प्रभुपाद जी की तरह कोई जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर पाता है। तो विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, है। और एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी हवाई अड्डे पे बैठे थे, काफी सारे भक्त उनके आसपास बैठे थे और सब जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो जब इकट्ठा जप होता है ना तो बजिंग साउंड आती है, ऐसे सुनाई देता है। तो जब इस तरह से आवाज आ रही थी तो वहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थे वो आए, बोले कि टेंपल प्रेसिडेंट को, आप टेंपल प्रेसिडेंट हैं, हेड कौन है, बोले ये है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं और बाकी लोग जो है ना वो आपसे दुखी हो रहे हैं, तो आप लोग करिए एक कमरे में चले जाइए और वहाँ बैठ के जप करिए अपना ये जो चैंटिंग है। तो कहते ठीक है। तो टेंपल प्रेसिडेंट खड़ा होता है और बोलता है सभी भक्त एक काम करें कि यहाँ से उठकर पास में एयरपोर्ट का एक रूम है उसमें जाकर जप करें। तो सारे के सारे भक्त चल देते हैं, सारे भक्त जब जाने लगते हैं तो प्रभुपाद जी भी उठते हैं और साथ में चल देते हैं। तो बोलते हैं टेंपल प्रेसिडेंट घबरा जाता है, मैंने गुरु को इंस्ट्रक्शन दे दिया, कहता है नहीं नहीं प्रभुपाद ये आपके लिए नहीं था। तो प्रभुपाद जी रुकते हैं, बोलते हैं क्या मैं भक्त नहीं हूँ। तो है ना, वो बोलता है नहीं नहीं आप तो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ भक्त तो फॉलो नहीं करता अथॉरिटी को। बोले नहीं नहीं वही तो भक्त है जो भी फॉलो करता है अथॉरिटी को, फिर तो मुझे क्यों रोक रहे हो। तो फिर वो भी प्रभुपाद जी भी रूम में चले जाते हैं। तो देखिए विनम्रता, हम तो अगर सीनियर डिवोटी बन जाए ना तो हम प्रसाद की लाइन में खड़ा होना अच्छा नहीं लगेगा, पीछे से मिल जाएगा प्रसाद हमको ना एक्स्ट्रा, लाइन कट करके जरा आप उनको बहुत सेवा कर रहे हैं एक थाली दे। अरे क्यों सेवा आपने लिए ना, सेवा को कंप्लीट करके लाइन में लगते प्रसाद दो, नहीं ले सकते हो तो सबसे आखिरी में लेना, आपका कर्तव्य सबसे बाद में लेना, सारे भक्तों के बाद में लेना, ये कट करके लेने का क्या सिस्टम है। ये तब होता है जब हमें अपनी श्रेष्ठता का अहंकार आने लगता है, अरे मैं पुराना डिवोटी हूँ सीनियर डिवोटी हूँ। तो भगवान को पसंद नहीं है, हो सकता है आसपास के लोगों को, अरे प्रभु जी आपके तो बड़े कॉन्टेक्ट है, आपको तो प्रसाद चुटकी में मिल जाता है, लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं है। कृष्ण को पसंद है विनम्रता, सबसे लाइन में आखिरी में जो व्यक्ति लगा वो कृष्ण को पसंद है ना। तो कृष्ण को हमें पसंद, चाहते हैं कि कृष्ण हमें पसंद करें, तो उसके लिए क्या करें, हम अपने जीवन में विनम्रता को लेके आए और हर एक जीवात्मा से प्रेम करें, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार अपने रूम में बैठे थे और इतने में तुरंत क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक कैटरपिलर, तो कैटरपिलर जानते हैं ना फूलों के ऊपर गोभी के कीड़े होते हैं, कैटरपिलर वो उनके रूम में ऐसे 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 कर रहा था। तो प्रभुपाद जी की निगाह पड़ी तो प्रभुपाद जोर से अपने सेक्रेटरी को बुलाया हरि बोल। तो सेक्रेटरी अंदर आया, जैसे अंदर आया तो प्रभुपाद जी बोले जल्दी से जाओ और एक पत्ता तोड़ के लाओ। तो उन्हें क्यों क्या हो गया प्रभुपाद, पत्ते का क्या करेंगे। तो बोले देखो ये जो कीड़ा है ना बस अपना अंतिम समय में है, अगर इसे अभी खाना नहीं मिला ना तो ये अपने सांस छोड़ देगा, तो इसलिए जाओ जल्दी से इसके पोषण की व्यवस्था करो, उसके प्रसाद की व्यवस्था करो। तो जाते हैं तो कृष्ण के चरणों से एक पत्ता, जैसे भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो एक पत्ता उठाते हैं और फिर भक्त लाकर उस कीड़े को देते हैं, तो कीड़ा धीरे धीरे खाता है। जब खाने लगता है तो प्रभुपाद कहते हैं अब ये संतुष्ट है, अभी सीधा चल रहा है, पहले वो ऐसे ऐसे चल रहा था अभी सीधा चल रहा है, अब इसको उठाओ और इसके कान में क्या बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जाकर इसको क्यारी फूलों की क्यारी में छोड़ दो, ये अपनी जगह चला जाएगा। ये विनम्रता है, हम करते हैं ऐसा किसी के साथ में। कुत्ता अगर मंदिर के अंदर आ जाए डंडा लेके भागते हैं, अरे उसे महाप्रसाद खिला दो कुछ थोड़ा सा, वो भाग्यशाली है कि मंदिर में प्रवेश मिला उसे उस शरीर में भी, अभी तो गाय बैल कुत्ता जानवर जो आएगा डंडा मारते हैं उसको, है हमारी एक्चुअली थिंकिंग ऐसी है। इसी प्रकार से एक बार श्रील प्रभुपाद वॉक कर रहे थे और कुछ भक्त थे उनके साथ में चल रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि वहां कुछ कुत्ते खड़े थे है ना, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं तो वहां पर कुछ डॉग्स खड़े हैं और क्या कर रहे हैं भौंक रहे हैं ना, क्या करते प्रभुपाद और जो भक्त भी हैं, तो सारे भक्त ने देखा प्रभुपाद जी क्या करेंगे, तो सारे भक्त ऐसे कर रहे थे और प्रभुपाद क्या बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कुत्ता चुप हो गया और फिर चला गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब कुत्ता चला गया तो फिर भक्त पीछे से आ रहे थे, काफी सारे भक्त है ना 150-200 भक्त पीछे पीछे चल रहे, प्रभुपाद दौड़ कर अपने रूम में चले गए चलकर, और पीछे से भक्त आ रहे थे तो कुत्ता उन भक्तों को देखकर फिर भौंकने लगा, तो है ना भक्त भी बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, प्रभुपाद को इमिटेट किए तो कुत्ता और जोर से बोलने लगा। जब वो भौंका तो सारे भक्त कंफ्यूज हो गए, फिर अंदर आए भागवतम क्लास में बैठे प्रभुपाद जी जय राधा माधव कर रहे समाप्त किए, तो भक्त बोला प्रभुपाद पहले प्रश्न, प्रभुपाद बोले ठीक है पूछो, बोले प्रभुपाद आपने कुत्ते को हरे कृष्णा बोला तो वो चुप हो गया, हमने हरे कृष्णा बोला तो वो और भड़क गए, क्या चक्कर। तो प्रभुपाद बोले मैंने कुत्ते को जीवात्मा समझ के हरे कृष्णा बोला, आपने कुत्ते को कुत्ता समझ के हरे कृष्णा बोला, इसलिए कुत्ता भड़क गया, अभी मुझे कुत्ता मानते हो तुम, तो कुत्ता भी फीलिंग जानता है, तो कुत्ता तो छोड़ो, जब कुत्ता जानता है तो भक्त तो जानता ही है। हमारे मंदिर में कोई भी नया व्यक्ति प्रवेश करे उसको इस प्रकार से प्रेम करें कि उसको फीलिंग हो कि दिस इज द बेस्ट प्लेस, ये सबसे सुंदर जगह है। हमारे घर में कोई बच्चा आए तो उसको इतना प्रेम करें कि उसको लगे कि दिस इज द बेस्ट प्लेस। आजकल बच्चे क्यों माँ बाप को छोड़कर शादियां करते हैं, क्यों माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि माँ बाप उनको क्या नहीं देते, प्रेम नहीं देते। माँ बाप अपने में बिजी, बच्चे अपने में बिजी, और उसके बाद क्या होता है इंडिपेंडेंट, चाहते हैं हमारे बच्चे क्या बन जाए इंडिपेंडेंट। कोई भी पतंग जब धागे से जुड़ी होती है तो कहाँ जाती है, नीचे की ऊपर, ऊपर, और धागा कट कर दो तो कहाँ जाती है, ऊपर या नीचे, तो इसका मतलब जब वो डिपेंडेंट थी, जुड़ी हुई थी, तब तो ऊपर जा रही थी, जब वो इंडिपेंडेंट हो गई, फ्रीडम मिल गया, तो कहाँ जा रही है? नीचे। इसीलिए हमारा समाज नीचे जा रहा है, क्योंकि फ्रीडम हमारे, हम चाहते हैं हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाए, जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाए। इंडिपेंडेंट बनाओ, लेकिन साथ में सिखाओ कृष्ण पर डिपेंडेंट रहो। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में। ऑफिस जाओ तो पहले हरे कृष्णा बोलो, ऑफिस से आओ तो हरे कृष्णा बोलो, स्कूल जाओ तो हरे कृष्णा बोलो, प्रसाद पाओ तो हरे कृष्णा बोलो। जब इस प्रकार से सिखाएंगे तो समझेंगे कि कर्ता कृष्ण है, हम नहीं, तो फिर हमारा जीवन बदल पाएगा। तो हमें इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार ध्रुव महाराज थे, उन्होंने इस प्रकार की भक्ति करी अपने जीवन में कि जब वो अपना शरीर त्याग कर, ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीने की भक्ति करी है, 6 months, हमें तो पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन भगवान नहीं आए। उन्होंने क्रैश कोर्स किया था 6 months का, और फिर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने बोला, ध्रुव तुम्हारी क्या अभिलाषा है? बोले, देखिए भगवान, जब मैं आया था तब तो चाहता था कि मेरे पिता के भी पिता, पितामह से भी बड़ा, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मुझे मिले, लोक मिले। तो ब्रह्मा जी के लोक को बोलते हैं सत्य लोक, है ना? तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक मुझे मिले, वो मैं चाहता था। लेकिन जब आपके दर्शन हुए तो मैं समझा, तब तो मुझे कांच के टुकड़े चाहिए थे, अब मुझे हीरा मिल गया। हीरा जब मिल गया तो मुझे कांच के टुकड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। तब इस प्रकार से बोला तो भगवान बोले, देखो ध्रुव, तुम्हारी अभिलाषा तो मुझे पूर्ण करनी पड़ेगी। क्यों? अगर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करी तो लोग क्या समझेंगे? कृष्ण बड़े चालू है, पहले तो भक्ति में लगाते हैं और उसके बाद इच्छा बदल देते हैं। जो इच्छा लेके जाओ वो तो कभी पूरी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी जो पहले की इच्छा है वो भी मैं पूरी करूंगा। तो भगवान ने उनके लिए एक लोक बनाया जिसका नाम है ध्रुव लोक, वैकुंठ लोक के अंदर, और उनको अपने पिता की गद्दी पर रहने का मौका दिया। 10,000 सालों तक उन्होंने राज्य किया। राज्य करने के बाद जो उनकी माता थी सुनीति, सुनीति माता जिन्होंने उनको सिखाया कि जाकर भगवान से भक्ति करो, वो जब अपना शरीर त्याग कर जा रहे थे ध्रुव महाराज, तो बड़े चिंतित थे। क्या बोले? जब मृत्यु आई तो मृत्यु के सिर पे पैर रखकर अपने विमान में बैठ गए, है ना? पुण्यशील और सुशील दो आए थे विमान में विष्णु दूत लेने के लिए। तो जब वो विराजमान हुए तो उन्होंने विष्णुशील और पुण्यशील से पूछा, विष्णु दूतों से, कि देखिए मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माता सुनीति अभी तक क्या है, इसी संसार में फंसी हुई है। जब तक वो इस संसार से मुक्त नहीं हो जाती, भक्त नहीं बन जाती, तब तक मैं क्या करूंगा, इस संसार को छोड़ नहीं सकता। तो पुण्यशील सुशील हंसने लगते हैं, अरे ध्रुव तुम रहोगे बालक के बालक, तुमने बचपन में भक्ति प्राप्त की है ना, इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो। क्यों, क्या हुआ? बोले आगे देखो, पीछे नहीं आगे देखो। तो ऐसे करके आगे देखते हैं अपने विमान में से, एक और विमान जा रहा होता है ना, उस विमान में भी दो विष्णुदूत होते हैं और उनकी माता सुनीति बैठी होती है। तो ध्रुव कहते हैं, ये कौन? कह रहे तुम्हारी माता। मेरी माता भी धाम जा रही है? कह रहे हाँ, जिस घर में ध्रुव जैसा पुत्र जन्म लेता है उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती है। 3 सदा मतलब 21 पीढ़ियां, 7 पिताजी की, 7 माताजी की और 7 आने वाली। तो 21 पीढ़ियां तर जाती है, तुम्हारी माता तरेगी नहीं, वो देखो तुमसे पहले धाम की हो जा रही है, उसका तो पहले कल्याण हो चुका। तो देखिए घर में भक्त का होना कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप भक्त नहीं बन पाए तो प्रयास करें कि आप अपने बच्चों को डिवोटी बना दीजिए, है ना? जैसे प्रभु जी ने अपने अपने बेटे का सेक्रीफाइस किया है उसको ब्रह्मचारी बनाने के लिए। तो अगर वो सच्चे भक्त बनते हैं अपने जीवन में तो क्या होगा, आपका कल्याण निश्चित है। Definitely, you are going back to Godhead. अगर वो सच्चे भक्त बन जाते हैं, सेवा करते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं। तो ये हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को श्रेष्ठ भक्त बनाने की शिक्षा प्रदान करें, ठीक है? और आप भी अपने जीवन में जप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय।